नमस्ते, मैं हूं नताशा कॉल और आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में पेश किया गया विक्टोरिया सरकार का 2023-2024 का बजट पेपर, जिसमें कहा गया है कि राज्य में VCE स्तर पर हिंदी और पंजाबी पढ़ाने के लिए 3 नए बीकन स्कूल खोले जाएंगे और इस कदम के लिए सरकार $3.5 मिलियन का निवेश भी करेगी। इसके अलावा हिंदी और पंजाबी भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इस नई घोषणा के बाद हिंदी पढ़ाने वाले और सीखने वाले क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। मंजीत तेठी मेलबर्न में हिंदी पढ़ाती हैं। मंजीत जी, आप कितने सालों से मेलबर्न में हिंदी पढ़ा रही हैं?
जी, मैं करीब करीब 33 वर्षों से भाषाओं के स्कूल में काम कर रही हूँ
जी।
और जी हाँ, वहाँ पर मैं VCE की हिंदी पढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया था ब्रंसविक में।
अच्छा।
जहाँ पर मिश्रित समूह के बच्चे थे।
अच्छा।
और फिर VCE 1993 में पहला बैच निकला और वहाँ से ब्रंसविक से ब्लैकबर्न, ग्लेनवेवली और फिलहाल तो यहीं पर ही हम काम कर रहे हैं और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से भी जुड़े हुए हैं
जी। तो मंजीत जी, ये तो बहुत ही एक लंबा अरसा हो गया है, 3 दशक से आप हिंदी मेलबर्न में पढ़ा रही हैं बच्चों को और अब VCE की स्टूडेंट्स को भी, आप छात्रों को भी हिंदी पढ़ाती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3 दशकों से कितनी विकसित हो पाई है हिंदी भाषा विक्टोरिया में?
धीरे धीरे समय के अनुसार तो जी हाँ, काफी तेजी से आ रही है। मेरे से पहले भी दूसरे अध्यापक थे, डॉक्टर रमाकांत पांडे जी। थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास में देना चाहूंगी कि सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट नई दिल्ली के द्वारा करस्पोंडेंस कोर्स होता था पहले और 1935 में BSL खुला और इसे काफी लंबा समय भी हो गया और इसे शनिवार का आधुनिक भाषाओं का विद्यालय कहते थे, सैटरडे स्कूल ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। और 20 बच्चे, कहा गया 20 बच्चे आप लेकर आए और एक शिक्षक, तब हम देंगे। तो सबसे पहली कक्षा ब्रंसविक में खुली थी 1986 में और कम बच्चे थे और धीरे धीरे ये बढ़ने लगे और स्टडी डिजाइन बना, पब्लिश हुआ और सबसे पहले टेक्स्ट बुक भी लिखी गई ऑस्ट्रेलिया में समकालीन हिंदी और हिंदी नक्षत्र पर। धीरे 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 कई पुस्तकें भी लिखी गई, पत्रिकाएं भी लिखी गई और जैसे कि इस कोर्स को बढ़ाने के लिए एक केंद्र खुला, फिर दो, फिर तीन और आज 14 केंद्र हैं जहां पर हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाती है पूरे विक्टोरिया में। पर यह एक बहुत बड़ा भाषाओं का केंद्र है जिसमें 54 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं 44 केंद्रों में, उनमें से 14 केंद्र ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है।
जी मंजीत जी, अभी हाल ही में विक्टोरिया बजट पेश किया गया है और जिसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा को और बढ़ाने के लिए राज्य में 3 नए स्कूलों में हिंदी VC लेवल पर पढ़ाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सरकार का जो ये कदम है, ये एक तरह से परिपूर्ण होगा हिंदी को और राज्य में उभारने के लिए?
जी हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत ही अच्छी सूचना मिली है। जैसे ही सुनने में आया था तो यह एक बहुत अच्छी बात है ताकि जो हमारी अपनी पहचान बनाने में और हिंदी भाषा को सिखाने में आगे लेकर जाएगी। और क्योंकि यह एक बहु सांस्कृतिक समाज है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है हमारी, तो जब ये इस सूचना को सुना तो लगा कि किस प्रकार अपनी हिंदी भाषा को एक पहचान बनाते हुए इस एक विदेशी धरती पर अपने कदमों को अपने विद्यार्थी, अपने समुदाय, अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर इसको किस प्रकार चलाया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे ये 3 विद्यालय ही हैं, स्टेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कैथोलिक स्कूल, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बच्चों की जो फंडिंग मिलती है वो पब्लिक स्कूल में होती है, स्टेट स्कूल में, फिर फेडरल में, फिर प्राइवेट स्कूल में। लेकिन लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से ये जो गैप है वो कम होता जा रहा है। तो जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो सरकार की तरफ से, जैसे जितनी भी फंडिंग मिलती है उसका किस प्रकार पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। जैसे पब्लिक स्कूल में पर विद्यार्थी जो है वो 9,000 गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है, प्राइवेट स्कूलों में 10,300 थी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन धीरे धीरे यह कम होता जा रहा है। तो अन्य विदेशों की तुलना में भी ऑस्ट्रेलिया में अधिक है प्रपोर्शन ऑफ द पब्लिक मनी गोइंग टू प्राइवेट स्कूल इज मच लोअर देन इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका उद्देश्य था कि जो कैथोलिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो कि पीड़ित परिवारों से आते हैं, और धीरे धीरे ये बंद होता जा रहा था, इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने इस तरह की फंडिंग देकर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसी में से एक नतीजा आज हमें भी देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ सामना भी है करना पड़ेगा, उद्देश्य भी है जिसका हमें पालन करना पड़ेगा। और उस मुद्दे नजर को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा अनुदान दिया है, फंडिंग दी है, इसका सही उपयोग होना चाहिए, तभी इस चीज का मजा है। सरकार का तो हम धन्यवाद करते ही करते हैं, क्योंकि 3.5 मिलियन जो दिए गए हैं शिक्षा को, हिंदी भाषा की शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए है, और मुख्य तौर पे जैसे विद्यालयों में दिए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है
जी।
पर इसके साथ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे कि कहाँ से सहायता मिल सकती है, किस प्रकार इसे आगे लेकर जाया जाए, सरकार से, समुदाय से और लोगों से। और जैसा कि आप जानते हैं कि 170,000 लोग भाषा बोलते हैं, और हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि इस भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात है। भाषा सीखने के लिए तो हम विद्यालय जाते हैं, और हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग है जो विद्यार्थी अपना समय इसमें बिताते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना, विद्यालय है ज्ञान का घर, मिलती वहाँ शिक्षा हर पल। तो इससे प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूर्वजों की भाषा है और अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर और भावपूर्ण है, एक नम्य भाषा है। तो हम इसे क्यों ना आगे बढ़ाएं, और इससे प्रेरित होकर हमें बोलना सीखना चाहिए, इसकी संस्कृति को अपनाना चाहिए, इससे जुड़े रहना चाहिए, और जिससे हम अपनी पहचान बना सकें।
सामर्थ राघवेंद्र हिंदी भाषा के छात्र हैं, और ये 2020 में VCE हिंदी टॉपर रह चुके हैं। वे कहते हैं,
नमस्ते, मेरा नाम समर्थ राम राघवेंद्र है, और मैं प्रस्तुतः मेलबर्न के मुनैश यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी के दूसरे वर्ष में प्रवृत्त हूँ। मैं भूतपूर्व हिंदी छात्र रह चुका हूँ, और इस लिहाज से मैं आज आपके सामने अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करना चाहूँगा कि मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया में हिंदी शिक्षा का महत्व अत्यद्भुत है और अति स्मरणीय भी है। हमारे लिए, विशेषतः प्रवासी भारतीयों के लिए, हिंदी एक ऐसा सूत्र है जो हमें अपने मातृ देश और हमें अपने मूल देश से बांधता है, और यह हमें एक ऐसे रिश्ते में संजोता है जिस रिश्ते का मापदंड इस संसार में ही नहीं है। प्रवासी भारतीयों के साहित्य में और प्रवासी भारतीयों के भावनाओं में वो अलग पलक है और अलग एक फलक है जो अन्य संबंधों में नहीं दिखता। इसीलिए मेरा मत तो यही है कि विशेषतः विक्टोरिया के जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में हिंदी का पाठ्यक्रम होना और हिंदी का अनुशासन और हिंदी की शिक्षा होना, ये काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि हम जैसे प्रवासियों के लिए यही एक ऐसा सूत्र है जिससे हम अपने देश के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। इसके साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार, जो अभी तक हिंदी के विषय में काफ़ी जागरूक है और इस विषय में उनकी सहायता अपरंपार है, मैं उनसे ये भी निवेदन करूँगा कि भविष्य में भी ये योजनाएं बनाएं जिससे और भी हिंदी छात्र, विशेषतः ऑस्ट्रेलिया में और विक्टोरिया में, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इनको प्रोत्साहन मिले और इनकी उत्सुकता और कौशलता और भी बढ़ाई जाए। और इसके लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ये छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कारों के द्वारा इनका मनोबल बढ़ाया जाए, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदी छात्र पढ़ते हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए।